नमस्कार। आज के इस दौर में जहां हर तरफ जानकारी का सैलाब है, क्या हम सच में समझदार हो रहे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ सूचनाओं के बोझ तले दबते जा रहे हैं? ये सवाल आज बहुत अहम है और इसी से जुड़ी एक बहुत खास पुस्तक पर आज हम बात करेंगे, शिक्षा ही नहीं विद्या भी। ये पुस्तक पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 1988 से 90 के बीच लिखी थी। ये उनकी क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तकमाला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूज्य गुरुदेव ने, जो 20वीं सदी के महान विचारक और गायत्री परिवार के संस्थापक थे, इसे अपना ज्ञान शरीर कहा था और उन्होंने 1990 की वसंत पंचमी पर वंदनीय माताजी से आग्रह भी किया था कि ये ज्ञान जन जन तक पहुंचे। तो आज हम इसी ज्ञान शरीर को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आज ये हमारे लिए कितना प्रासंगिक है। तो सबसे पहले ये बताइए कि पूज्य गुरुदेव शिक्षा और विद्या में क्या मूल अंतर बताते हैं, आज के समय में इसकी क्या अहमियत है?
जी देखिए, पूज्य गुरुदेव का मानना था कि जैसे हम 21वीं सदी में आ रहे हैं तो हमें अपनी सोच में एक गहरा बदलाव लाना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे किसी नए देश में जाते हैं तो वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है ना।
हाँ बिल्कुल,
तौर तरीके भी बिल्कुल। वैसे ही नए युग के लिए हमें पुरानी संकीर्ण सोच को छोड़ना होगा। वे कहते थे कि आज दुनिया में जो ज्यादातर समस्याएं हैं उनकी जड़ क्या है?
क्या है?
मनुष्य की अदूरदर्शिता, मतलब दूर की ना सोचना और संकीर्ण स्वार्थपरता,
यानी सिर्फ अपना फायदा देखना।
हाँ, सिर्फ मैं और मेरा, अपने आज के छोटे से लाभ में उलझे रहना। इसी वजह से व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है, कठोर बन जाता है, यहाँ तक कि कृपण मतलब कंजूस भी। और यही सोच, यही प्रवृत्ति समाज में फिर अनगिनत छल, अपराध और अनर्थ पैदा करती है।
ये बात तो आज भी उतनी ही सच लगती है, चारों तरफ देखें तो ये चीजें नजर आती हैं। तो अगर समस्या इतनी गहरी है, हमारी सोच में ही है, तो पूज्य गुरुदेव ने इसका समाधान क्या बताया? सिर्फ जानकारी, जिसे हम आजकल शिक्षा कह देते हैं, वो काफी क्यों नहीं है उनके अनुसार?
यहीं पर विद्या का असली महत्व सामने आता है। पूज्य गुरुदेव का एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी विचार ये था कि सिर्फ शिक्षा या साक्षरता बढ़ जाने से काम नहीं चलेगा।
अच्छा।
हाँ, बल्कि वो मानते थे कि ये तो इंसान को और ज्यादा स्वार्थी भी बना सकती है अगर उसके साथ सही मूल्य न जुड़े हों। विद्या उनके लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं थी।
तो क्या थी?
विद्या थी चरित्र।
अच्छा।
विद्या थी भाव संवेदना, यानी दूसरों का दर्द महसूस करने की क्षमता।
अच्छा।
और विद्या थी विवेकशीलता, सही गलत की समझ। वे मानते थे कि एक बेहतर दुनिया, जिसे वो नव सृजन कहते थे, उसके निर्माण के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जिनमें विद्या हो।
चरित्रवान, संवेदनशील, विवेकशील लोग।
बिल्कुल, सिर्फ डिग्रीधारी नहीं। और इसके लिए उन्होंने दो कदम अनिवार्य बताए।
कौन से दो कदम?
पहला, संयम।
संयम मतलब
अपनी निजी जरूरतें, अपनी महत्वाकांक्षाएं, इनको कम करना। सादा जीवन, उच्च विचार, अपनी बचत को दूसरों की भलाई में लगाना।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा, सेवा साधना।
सेवा साधना
यानी इस विद्या को, इस युग चेतना को फैलाने के लिए पुरुषार्थ करना, पूरी लगन से कोशिश करना, लोक शिक्षण का काम।
अच्छा, तो मतलब सिर्फ जानना या सोचना काफी नहीं है, उसे जीना भी है और दूसरों तक पहुंचाना भी है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये सब होगा कैसे? क्या पूज्य गुरुदेव ने इस विद्या या युग चेतना को फैलाने की कुछ ठोस जमीनी तरीके भी बताए थे?
हाँ हाँ, बिल्कुल बताए थे। उन्होंने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिए बल्कि जमीन पर काम करने के कई अनूठे तरीके भी बताए। जैसे पहला तो स्वाध्याय।
स्वाध्याय?
हाँ, यानी उनके लिखे युग साहित्य का खुद अध्ययन करना, और उन्होंने तो उसे बिना कॉपीराइट के उपलब्ध कराया था
ताकि कोई भी छाप कर फैला सके।
जी हाँ। दूसरा था सत्संग, लेकिन उनका सत्संग वो पारंपरिक कथा प्रवचन वाला नहीं था।
फिर कैसा था?
वो था सामयिक विषयों पर, आज की समस्याओं पर केंद्रित चर्चा, मिलकर सोचना, समाधान खोजना।
ये तो बहुत प्रैक्टिकल है।
बिल्कुल। फिर कुछ और अनोखे तरीके भी थे, जैसे झोला पुस्तकालय।
झोला पुस्तकालय, ये क्या था?
इसमें कार्यकर्ता झोले में पुस्तकें लेकर घर घर जाते थे, पुस्तकें देते थे, फिर अगले हफ्ते पुरानी लेकर नई दे आते थे।
वाह, ताकि ज्ञान उन तक भी पहुंचे जो शायद बाहर नहीं जा पाते।
बिल्कुल। फिर दीवारों पर सद्वाक्य लेखन, अच्छे विचार लिखना और ज्ञान रथ।
ज्ञान रथ, चलता फिरता रथ।
हाँ, चलते फिरते प्रचार वाहन जिनमें साहित्य होता था, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी गांव गांव तक संदेश पहुंचाने के लिए। और इसके साथ ही उन्होंने व्यक्ति की जो आंतरिक शक्ति है उसे बढ़ाने पर भी बहुत जोर दिया।
आंतरिक शक्ति कैसे?
उन्होंने गायत्री मंत्र जप को सूक्ष्म शरीर के लिए जरूरी बताया। सूक्ष्म शरीर यानी हमारी सोच, हमारी ऊर्जा का स्तर। और उगते सूर्य के ध्यान को कारण शरीर के लिए। कारण शरीर मतलब हमारे मूल संस्कार, हमारी गहरी भावनाएं।
अच्छा, इससे क्या होता था?
इससे व्यक्ति में ओजस यानी शारीरिक बल और जीवन शक्ति, तेजस यानी मानसिक और बौद्धिक प्रखरता, और वर्चस यानी एक तरह का आध्यात्मिक प्रभाव, पर्सनैलिटी का ऑरा वो बढ़ता है। व्यक्ति शक्तिशाली बनता है।
ये तो हुई व्यक्ति की बात या छोटे समूहों की, क्या उन्होंने किसी बड़े पैमाने पर सामूहिक प्रयास की शक्ति पर भी बल दिया था? मैंने सुना है 1990 से 2000 तक के एक 10 वर्षीय कार्यक्रम के बारे में कुछ।
आपने बिल्कुल सही सुना है। पूज्य गुरुदेव ने उस दशक को यानी 1990 से 2000 तक के समय को युग संधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल बताया था।
युग संधि?
जी।
और लक्ष्य ये था कि इस दौरान लाखों युग शिल्पियों को तैयार किया जाए।
युग शिल्पी?
जी।
ये कौन थे? युग शिल्पी यानी ऐसे लोग जो संयम और सेवा के रास्ते पर चलने का व्रत लें, जो इस बदलाव के वाहक बने, और साथ ही बड़े पैमाने पर सामूहिक साधना का भी लक्ष्य रखा गया।
जैसे?
जैसे रोजाना 24 करोड़ गायत्री मंत्र जप का महापुरुष चरण। ये एक बहुत बड़ी सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करने की कोशिश थी।
24 करोड़ रोज?
ये तो बहुत बड़ा अनुष्ठान है।
हाँ, बहुत बड़ा।
उनका विश्वास था कि ऐसे संगठित सामूहिक प्रयत्नों से ही समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा, सतयुग की वापसी यानी एक बेहतर युग की वापसी संभव होगी।
तो अगर हम संक्षेप में समझें, शिक्षा ही नहीं विद्या भी, पुस्तक हमें अक्षर ज्ञान या सिर्फ जानकारी जमा करने से बहुत आगे ले जाती है। ये असल में चरित्र निर्माण की, सही समझ जगाने की और दिल में संवेदना पैदा करने की बात करती है। पूज्य गुरुदेव का संदेश बिल्कुल साफ है कि व्यक्तिगत जीवन में संयम लाए बिना और समाज की निस्वार्थ सेवा किए बिना वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है।
जी हाँ, और ये सिर्फ कोई गुजरे जमाने की बात नहीं है। आज सोचिए, ये सूचना विस्फोट का युग है, ज्ञान हमारी उंगलियों पर है। ऐसे में सवाल तो और भी जरूरी हो गया है कि हम इस ज्ञान को ले कैसे रहे हैं, क्या सिर्फ जानकारी की तरह या जीवन को बदलने वाली विद्या की तरह।
ये वाकई में सोचने वाली बात है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम संयम और निस्वार्थ सेवा जैसे आदर्शों को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, ताकि हमारी शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का या जानकारी इकट्ठा करने का जरिया न रह जाए, बल्कि वो सचमुच विद्या बने और शायद इसी से समाज में वो सकारात्मक बदलाव आ सके जिसकी हम सब उम्मीद करते हैं।